From the conference center at Temple Square in
Salt Lake शहर में Temple Square सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 183वां वार्षिक जनरल सम्मेलन है। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों के साथ और इस अधिवेशन के लिए संगीत मार्मन गायन मंडली द्वारा चुना गया है। बोनेविला डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए किया गया है। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग प्रतिलिपि बनाना, इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor.
अध्यक्ष डेटर एफ उकडोर्फ गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you.
भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर का इस दोपहर के जनरल सम्मेलन में के 183rd पांचवे और समापन सत्र में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। हम आप सभी गिरजाघर के सदस्यों और सभी मित्रों का हर जगह से अभिनंदन करते हैं जो इस आचरण में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा भाग ले रहे हैं। इस सत्र के लिए संगीत मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन के अंतर्गत गायक मंडली के द्वारा लिंडा मार्गरेट और बोनी गॉडलेफ ऑर्गन पर के साथ दिया जाएगा। गायक मंडली इस सभा का आरंभ कम यू चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड गाकर करेगी और प्रारंभिक प्रार्थना बहन कैल एम स्टीफन्स सहायता संस्था की जनरल अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार द्वारा दी जाएगी। इसके बाद गायक मंडली टेल मी द स्टोरीज ऑफ जीसस गीत गाएगी।
Children of Our dear Heavenly Father, our hearts are filled
with love. हमारे हृदय अपार से भरे हुए हैं. हम आपके सामने आते हैं सुरक्षा. हम यहाँ पे आभार प्रकट करते हैं लिविंग प्रॉफिट प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन के लिए. हम उन्हें समर्थन देते हैं. वी लव. हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं प्रेसिडेंट आयरिंग और प्रेसिडेंट ऑक्टोफ के लिए और सारे प्रेरितों के लिए. और उनको उनको उनका समर्थन करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं. उनकी परा उनके घरों को और उनको आशीषित कीजिए कि वे आपके राज्य को बनाएं और आगे बढ़ाएं और सबको सबकी सेवकाई करें. हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी योजना के लिए कि आपके पुत्र और पुत्रियों की जो योजना के लिए कि हमारे पास पवित्र आकृति और प्रकृति हो. हम इसे प्रत्येक के साथ रहिए. हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष को लिए और ज्ञान के लिए. हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ एकत्रित हो पाए हैं कि हम सीख सकें और बढ़ सकें और प्रोत्साहित हो सकें और आपके चुने हुए सेवक बन सकें. जब हम यहाँ से निकलें कि हम अपनी आपके बताए शब्दों को अपने घर ले जा सकें और शांति और अपने आप को व्यस्त कर सकें और विभिन्न तरीके से और प्रोत्साहन पा सकें जो आप चाहते हैं वो हम कर सकें और जो चाहते हैं हम बन सकें. आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और आपके जो चुने हुए आवश्यकता और सेवक बने और आपकी इच्छा को जान सकें और हमारे परिवार को. हम आपका प्रार्थना करते हैं और जो कुछ कि हमें शक्ति मिले और हमारी परिवार को भी बल मिले और जब हम संसार में जाएं और आपके राज्य को बनाए इस पृथ्वी पर. हम आपके पुत्र उनके द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं. हम आभार व्यक्त करते हैं उनका और उनके लिए इन दिन उन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन.
Jesus, I
और अब हम एल्डर जेफरी आर हॉलैंड और एल्डर डैलिन एच ओक्स 12 प्रेरित के परिषद से कृपा कर सुनेंगे। इनके बाद एल्डर क्रिस्टोफल गोल्डन जूनियर 70 के होंगे।
On one occasion, Jesus came upon
एक अवसर पर यीशु एक लेखकों के समूह के पास आए जो प्रबलता के साथ उसके शिष्यों से बहस कर रहे थे। जब उदारता ने पूछताछ की उस मतभेद के कारण की पीड़ित बच्चे के पिता ने आगे आकर कहा कि उसने उनसे अपने पुत्र के लिए यीशु के शिष्यों से आशीष देने को पूछा था, परंतु वे उसे देने में असमर्थ थे। लड़के का अभी भी दांतों से पसीना, मुंह से झाग आना और जमीन पर गिरना जारी था। पिता ने यीशु से अनुग्रह किया कि आखिरी आश्चर्य क्या होगा। उसकी आवाज में निराशा थी, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। इस व्यक्ति की मूल धारणा उसके अपने प्रवेश द्वारा, परंतु उसके अकेले उसकी अब भलाशा थी। हमें बताया गया लिए अच्छा है, यहाँ तक कि तुम्हारा विश्वास इच्छा से अधिक नहीं हो सकता। आलमा ने घोषित किया था, इस इच्छा को अपने अंदर तब तक काम करने दो जब तक कि तुम मेरी बातों के एक अंश पर भी विश्वास न करने लगो। और कोई बची हुई आशा के बिना, ये पिता दावे के साथ कहता है कि विश्वास क्या है। उसने संसार के उद्धारकर्ता से अनुग्रह किया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मैं इस वाक्य को बिना रोए पढ़ नहीं सकता। बहुवचन हमारे का उच्चारण का प्रयोग इच्छा पूर्वक किया गया है। व्यक्ति प्रभावित होकर कहता है, हमारा सारा परिवार याचना करता है, हमारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी रुकेगा नहीं, हम अपने अंतिम छोर में हैं, हम नहीं जानते कहाँ मोड़ना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हम सभी कुछ के लिए आभारी होंगे। अधूरी आशीष, एक किरण की आशा, थोड़ा सा ऊपर उठना, इस बोध से जो उस लड़के की माँ प्रत्येक दिन अपने जीवन में उठा रही थी, हम पर तरस खा, हमारी मदद कर। परंतु यदि तू कुछ कर सके, इसे पिता द्वारा उसके पास लौटने पर बोले गए थे, परंतु यदि तू विश्वास ना कर सके, स्वामी द्वारा बोला गया, इन चुनौतियों से अवगत हो, मसीह जारी रखते हैं और सब कुछ हो सकता है।
If thou canst believe, spoken by the Master, and straightway the
सीधा रास्ता धर्मशास्त्र कहता है, ना धीरे ना ही बनावट से ना ही उपहास से, परंतु सीधे से। पिता अपने पिता होने के नाते सीधे से दुख से रोया, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अभी भी अधूरे विश्वास के जवाब में यीशु ने लड़के को चंगा किया, सच में मृत्यु से उसे जिलाया, जैसे मरकुस में घटना का वर्णन है। इस कोमल धार्मिक लेख के साथ मैं सीधे से गिरजे के युवा लोगों से बोलना चाहता हूँ। युवा आयु से या युवा सालों की सदस्य से या युवा विश्वास से, इस तरह से या अन्य तरह से, जिसमें हम सभी शामिल हैं,
Observation number one regarding this account.
संख्या पर ध्यान दे। इस लेख के उपरांत ये है कि विश्वास की चुनौती का सामना करते हैं, पिता पहले अपनी शक्ति का दावा करता है और फिर उसकी सीमा को जानता है। उसकी पहली घोषणा दृढ़ और बिना जिज्ञासा के थी, प्रभु में विश्वास करता हूँ। मैं उन सब से कहना चाहूंगा जिनको अधिक विश्वास की चाह है, इस व्यक्ति को याद करें, भय या शक या परेशानी के समय में उस जमीन को पकड़ें जिसे आप पहले ही जीत चुके हैं, चाहे वह जमीन सीमित ही हो। उन्नति में हम सभी नश्वरता में अनुभव करते हैं। इस लड़के की विपत्ति आत्मिकता के अनुकूल थी या इन अभिभावकों को निराशा हम सभी पर आनी है। जब ये लम्हे सतह के ऊपर आए, सधान तुरंत नहीं आता। पकड़े रहे जिसे आप पहले से ही जानते हो और दृढ़ता से जब तक और ज्ञान न मिल जाए खड़े रहें। यही वे घटना है, यही विशेष चमत्कार है जो यीशु कहे थे, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव न होगी। आपके विश्वास की नाप या आपके ज्ञान का स्तर की को ही कोई समस्या नहीं है। ये अंगठ अखंडता आप विश्वास के प्रति जो आप में दिखाते हैं और सच्चाई जो आप में पहले से ही है। दूसरा अवलोकन पहले का ही रूपांतर है।
Integrity you demonstrate toward the faith you do have and the truth you already know. The second observation is a variation.
दूसरा अवलोकन पहले का ही रूपांतर है। जब समस्या आए और प्रश्न उठे, अपने विश्वास पर प्रश्न ना करें, कहने के द्वारा कि आपके पास इतना नहीं है, ले जाता है आपका अविश्वास की ओर। ये कुछ ऐसा है मुर्गी की चोंच से भरने की कोशिश करना। अब इस पर मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं आपसे विश्वास को दिखाने को नहीं कह रहे जो आपके पास है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ विश्वास में सच्चे रहें, आपके पास जो है। कभी कभी नैतिक साहस से सच्चाई के साथ हम ऐसा काम कर शंका की घोषणा करें, तब ये विश्वास की सच्ची घोषणा होती है, ये नहीं। चलिए हम सब याद रखें, इस धर्मशास्त्र लेख का साफ संदेश है, अपने प्रश्नों के बारे में स्पष्ट हो जाएं। आपको जरूरत है, जीवन इससे भरा हुआ है, एक तत्व या दूसरे से। परंतु यदि आप और आपका परिवार चंगाई पाना चाहते हैं, उन प्रश्नों को चमत्कारी विश्वास के कार्य के रास्ते में आने न दें।
Working its miracle. Furthermore, you have more faith than you think.
और अधिक आपके पास अधिक विश्वास है, आप सोचेंगे भी नहीं। इसलिए मॉर्मन की पुस्तक ये कहती है, बहुत अधिक साक्षियां प्राप्त हुई थी, उनके फलों से तुम उसे पहचान लोगे। यीशु ने कहा, और सुसमाचार की जीने से सभी जगह अंतिम दिनों के संतों के जीवन की साक्षी है। जैसे पत्रस और यहुन्ना ने फरीसियों से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ, हम नहीं कर सकते परंतु उन बातों को बोल सकते हैं जिन्हें हमने देखा और सुना है। और क्या हमने देखा और सुना है? वो एक ध्यानपूर्वक चमत्कार हुआ था इस गिरजा के बहुत के सदस्यों के जीवनों में, इसे नकारा नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, ये एक पवित्र काम प्रकटीकरण और भरपूर आशीषों के साथ प्रत्येक तरफ से प्रगति पर है, तो अति खोला ना करे। यदि समय दर समय विषय अब उभार आए जिसे जांचने समझने और सुलझने की जरूरत हो, वे करते हैं और वे करेंगे। इस गिरजे में हम जानते हैं जितना है हम नहीं जानते। हमेशा याद रखें, इस ट्रेलेस्टियल जगत में हम सभी को विश्वास के द्वारा चलना है। तो कमजोर मानवजत के लिए आपके अपने यहाँ तक, वो इस गिरजे में स्वयं सेवक और सेविकाओं के द्वारा सेवा करते हैं, उसका संपूर्ण इकलौता पुत्र को छोड़कर। परमेश्वर अभी अपूर्ण लोगों के साथ जब से शुरुआत हुए कार्य कर रहा है। ये उसको बहुत ही निराश करने वाला रहा होगा, परंतु वह इसके साथ रहता है तो हमें भी रहना चाहिए। और आप अपूर्णता देखते हैं, याद करें कि इस पवित्र काम की सीमा नहीं है। जैसे एक वरदान पाए लेखक ने सुझाव दिया था, जब बर्तन पूरा भर जाए, यदि कुछ नुकसान हो या तेल गलती नहीं, क्योंकि बर्तन में रखने की पूरी जगह न थी। वह सीमित बर्तन आप और मैं हूं, तो धैर्य रखें और क्षमा करें। आखिरी अवलोकन, जब शंका या परेशानी आए, सहायता मांगने के लिए डरे नहीं। यदि हम वह चाहिए, नम्रता और ईमानदारी से जैसे पिता ने किया था, हमें भी मिल सकता है।
And kind and forgiving. Last observation. When doubt or difficulty come, do not be afraid to ask for help. If we
want, शास्त्र कहता है, जैसे कि सच्ची अभिलाषा, जैसे सच्ची कामना, पूरे हृदय के उद्देश्य के साथ अनुसरण करें, ढोंगी की तरह नहीं, और परमेश्वर के सामने कोई धोखा नहीं। जवाब में इस तरह की अटलता, परमेश्वर हमेशा से हमारी मदद पर्दे के दोनों ओर से भेजता है, हमारे विश्वास को मजबूती देने के लिए। मैंने कहा था, मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ। मैं अभी भी एक 14 साल का लड़का हाल ही में मुझसे जिज्ञासा से बोला, भाई हॉलैंड, मैं अभी तक नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ कि गिरजा सच गिरजा में विश्वास मैं करता हूँ या नहीं। मैंने उस लड़के को गले से लगाया, जब तक उसकी आंखें चकित न हो गई। मैंने उसे अपनी आत्मा की गहराई से बताया कि भरोसा एक अमूल्य शब्द है, यहाँ तक एक अति विशेष काम, और उससे कभी भी सिर्फ विश्वास करने के लिए शर्मिंदा नहीं होना होगा। मैंने वही कहा जो मसीह खुदा कहते खुद कहते, मत डर, केवल विश्वास कर। 12 एक छंद जो युवा गॉर्डन बी हिंकली को प्रचारक कार्य में लिए गया। मैंने इस लड़के को बताया कि भरोसा हमेशा बदलाव की ओर का पहला कदम है, और हमारे सारे विश्वास को विकसित करने का संधान है। प्रत्येक छंद के साथ शुरू होता है, हम विश्वास करते हैं, और मैंने उसे बताया कि मैं उसकी प्रश्न की ईमानदारी पर कैसे गर्व करता हूँ। 60 सालों के लगभग तब से, जब मैंने 14 साल के नए बच्चे पर विश्वास करने के साथ मुझे लाभ देता है, मैं जो कुछ अब जानता हूँ घोषित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हर समय में और हर जगह पर हर परिस्थितियों में है, हमारे प्रिय स्वर्ग में पिता। मैं जानता हूँ कि यीशु ही उनका संपूर्ण बच्चा है, जिसका जीवन प्रेम के साथ पिता और पुत्र की इच्छा के द्वारा हम सभी के लिए, जो संपूर्ण नहीं है, कि मुक्ति के लिए दी गई थी। मैं जानता हूँ वह मृत्यु से जी उठा, दोबारा से जिए, और क्योंकि उसने किया था, मैं और आप भी कर सकते हैं। उस जोसेफ स्मिथ को, जो जानता था कि वह संपूर्ण नहीं है, 15 नहीं परमेश्वर के हाथ के चुने हुए सुसमाचार को पृथ्वी पर पुनः स्थापित करने वाले औजार थे। मैं भी ऐसा करते हुए जानता हूँ, विशेष कर मॉर्मन की पुस्तक का अनुवाद द्वारा के अनुवाद द्वारा ने मुझे परमेश्वर के प्रेम की ओर सिखाया था, मसीह की पवित्रता और पुरोहित्य शक्ति के बारे में अन्य भविष्यवक्ता से अधिक जिन्हें मैंने पढ़ा, सुना या जीवन भर की खोज करते हुए जाना है। मैं जानता हूँ अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन, जो श्रद्धा और उल्लास के साथ 50वीं वर्षगांठ की ओर धर्म विधियों के करते हुए प्रेरित के रूप में बढ़ते जाते, यही सही तरीका है सफलता की ओर, आजकल के भविष्यवक्ता की मानसिकता का। मैं 14 दूसरे व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्हें आपने भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकरण होने का समर्थन किया है। समर्थन हाथों को उठाकर अपने दिलों से और उनके अपने भविष्यवक्ता कुंजियों के।
इन
बातों को मैं आपको घोषित करता हूँ, पत्रस की धारणा के साथ, भविष्यवक्ता के सच्चे शब्द हैं। एक बार भरोसे का एक छोटा सा बीज मेरे लिए उन्नत का जीवन के पेड़ बना है, तो यदि आपका विश्वास इसमें थोड़ा है या किसी और कारण से, मैं आपको मेरे ऊपर आश्रित करने होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं जानता हूँ ये कार्य सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। सिर्फ हमारे खतरे हमें शक करने की अनुमति देते हैं या शैतान हमें रास्ते से दूर ले जाता है। आशा करें, यात्रा जारी रखें, ईमानदारी से अपने प्रश्नों और विचारों को जानो, परंतु पहले अपने विश्वास को उजागर करें, क्योंकि सारी बात संभव है इस विश्वास से। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
One of our most beloved hymns,
हमारे प्रिय प्रस्तुति गीतों में से एक इन शब्दों से साबित होता है, आओ आओ मेरे पीछे हो लो, उद्धारक ने कहा, फिर आओ उसके पत्तियों पर चलें, क्योंकि हम इस प्रकार हो सकते हैं प्रिय के प्रिय परमेश्वर के प्रिय इकलौते बेटे के साथ। ये शब्द उस के शिष्यों को दिए गए सबसे पहले निमंत्रण से प्रेरित एक स्कॉटिस जॉन निकलसन द्वारा लिखे गए थे। हमारे कई पूर्वक मार्गदर्शकों की तरह वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उधारकर्ता और उधार की योजना के प्रति बहुत प्रेम था। इस सम्मेल के सभी संदेशों ने उधारकर्ता के पदचिन्हों पर उसके चलने में हमारे मदद की है। इसके उदाहरण और इसकी शिक्षा यीशु मसीह के प्रत्येक अनुयायी का पार्क का अनुदिखाती है। मसीह के समान अंतिम दिनों के संतों के यीशु के मसीह के गिरजाघर के सदस्य उदारकर्ता के जीवन का अध्ययन करते, जैसा कि नए नियम की मती, मरकुस, लूका, यहुन्ना की पुस्तकों में बताया गया है। मैं बाइबल की इन चार पुस्तकों में शामिल उदाहरणों और शिक्षाओं की समीक्षा करूंगा और हम में से प्रत्येक को निमंत्रण दूंगा कैसे उसका पुनर्स्थापित गिरजा हम और गिरजा यीशु मसीह के शिष्य होने के योग्य हैं। यीशु ने सिखाया था कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। उसने अपनी सेवकाई बपतिस्मा लेने के बाद शुरू की थी और वह और उसके अनुयायी ने दूसरों को बपतिस्मा दिया था। हम भी ऐसा भी करते हैं। यीशु ने अपना प्रचार उसके सुनने वालों को पश्चाताप करने का निमंत्रण देकर शुरू किया। विश्व के लिए उसके सेवकों का संदेश आज भी यही है। अपनी पूरी सेविकाई के दौरान यीशु ने आज्ञाएं दी और उसने सिखाया, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। उसने पुष्टि की थी कि उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसके अनुयायियों को लोगों के मूल्यवान और मनुष्यों की परंपरा का त्याग करना होगा। उसने चेतावनी दी थी, यदि तुम इस जगत के होते तो जगत तुम्हें अपने पांवों अपनों की तरह प्रेम करता, लेकिन तुम जगत के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस जगत से चुन लिया है, इसलिए जगत तुमसे व्यार करता है। जैसा प्रेरित पत्रस ने बाद में घोषणा की, यीशु के अनुयायी पवित्र लोग होते थे। अंतिम दिनों के संत जानते हैं कि हम इस जगत के नहीं हैं या मनुष्यों की परंपराओं से नहीं बंधे हैं, लेकिन हम अन्य के समान मसीह के अनुयायी हैं। कभी कभी हमारे लिए यह उदारकर्ता का अनुसरण करना और कठिन होता है। कुछ अपने आप को जगत के अनुरूप बना लेते हैं, क्योंकि यीशु ने जिन्हें शिक्षा दी उनमें से कुछ के विषय में उसने कहा था, उन्हें मनुष्यों द्वारा दिया गया सम्मान परमेश्वर द्वारा दिए गए सम्मान से अधिक प्यारा था। मसीह का अनुसरण करने की असफलताएं इतनी अधिक और इतनी संवेदनशील हैं कि इनकी सूची यहाँ नहीं दी जा सकती। ये संसार की प्रथाओं जैसे राजनीतिक संशोधनों से लेकर पहनावे और बहनाव सिंगार में अति परिवार करके परिवार की अनंत प्राकृतिक और कामकाज के मूलभूत मूल्यों से भटक जाना है। यीशु की शिक्षाओं का अर्थ केवल ज्ञान देना नहीं था, वह हमेशा व्यवहार में लाने के लिए थी। यीशु ने सिखाया था, जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता और इन पर चलता है उसकी तुलना बुद्धिमान मनुष्य से होती है, और धन्य है वह सेवक जिसे वह स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। एक अन्य प्रिय स्तुति गीत में हम गाते हैं, उदाहरक मैं आपसे प्रेम करना सीखूं, उस मार्ग पर चलूं जिसे आपने दिखाया है। उदाहरक मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा। जैसा यीशु ने सिखाया, जो उससे प्रेम करते हैं कि उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मसीह का अनुसरण करना कभी कभी किया जाना अमीनित व्यवहार नहीं है। उद्धारकर्ता ने यह सिद्धांत भी सिखाया था कि जानते हैं सब जगह लागू होती है। यीशु ने हमें यह सिखाया था कि हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं जब इसे याद करें। हम मनुष्य के प्रार्थना जानते हैं,
in remembrance of him. Members of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह गिरजा सदस्य का आज्ञा का पालन प्रति सप्ताह प्रत्येक सप्ताह में करते हैं, जिसमें हम रोटी और जल को लेते और अनुबंध को बनाते हैं और हमेशा उसे याद रखेंगे और उसे याद उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मसीह ने सिखाया था मनुष्य हमेशा प्रार्थना करते रहे। उसने उसका उदाहरण भी रखा जब उसने उसे सारी रात प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना में बिता दी। बाद में उसने अपने 12 प्रेरितों को बुलाया था। अन्य मसीह के समान हम अपने सभी आराधना सभाओं प्रार्थनाओं में सभा करते हैं। हम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सिखाते हैं कि हमें नियमित व्यक्तिगत प्रार्थना और प्रतिदिन घुटने के बल झुककर परिवार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु के समान हम अपने स्वर्ग के पिता से भी प्रार्थना करते हैं और ऐसा हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। उद्धारकर्ता ने गिरजे में सहायता के लिए 12 प्रेरितों को नियुक्त किया और उसने मृत्यु के बाद इसके कामकाज के लिए कुंजियां और अधिकार दिया था। अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजा यीशु मसीह के पुनास्थापित गिरजे के रूप में इसके संगठन और प्रेरितों को कुंजियां और अधिकार प्रदान करते समय इस उदाहरण का पालन करता है। कुछ जिन्हें यीशु ने अपना अनुसरण करने के लिए नियुक्त किया था तुरंत उसके पीछे नहीं आए, पर वे कर्तव्य के पूरा करने के लिए समय चाहते थे। यीशु ने उनके लिए जवाब था, कोई भी ऐसा जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है। बहुत से अंतिम दिनों के संतों की सिखाई प्राथमिकता का पालन करते हैं। इसमें शामिल है हजारों वरिष्ठ प्रचारकों और दूसरे शानदार उदाहरण जो बच्चों और नाती पोतों को छोड़कर उन प्रचार कार्यों को करते हैं जो उनके लिए नियुक्त किया जाता है। यीशु ने सिखाया था कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना की और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। एक शिक्षा के प्रति हमारी दृढ़ता अच्छी तरह जानी जाती है। चर परिचित खोई भेड़ के सिद्धांत में यीशु ने सिखाया कि हमें भटके हुए को भोजने चाहिए। जैसा हम जानते हैं थॉमस एस मॉन्सन ने हमारे साथी भाइयों और बहनों को बचाने के लिए अपने यादगार उदाहरण और शिक्षाओं में इस बारे में अधिक जोर डाला है। खोए हुए को बचाने के लिए अपने प्रयासों में हम प्रेम के विषय में अपने उद्धारकर्ता के बेजोड़ उदाहरण और विनम्र शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और उसने हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया। और अपने नश्वर सेवकाई के अंत में उसने कहा था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो हर कोई जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। एक दूसरे से प्रेम करने के रूप में यीशु ने सिखाया कि हम जब लोग गलत लोग करते हैं उसको भी क्षमा कर देनी चाहिए। जबकि बहुत से लोगों के लिए इस आज्ञा का पालन करना कठिन होता है। हम सभी अंतिम दिनों के संतों के प्रेरणादायक उदाहरणों को अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने लोगों के गलत काम को भी क्षमा किया यहाँ तक कि अधिक गर्म कर लोगों। उदाहरण के लिए क्रिस विलियम्स ने यीशु मसीह पर अपने विश्वास का अनुसरण निर्णय लेकर एक शराबी ड्राइवर को क्षमा कर दिया था जिसने उसकी पत्नी और उसके दो बच्चों को सड़क दुर्घटना में मार डाला था। दुर्घटना के दो दिन बाद ही इस दुखी पुरुष ने जो कि उस समय हमारा बिशप था कहा था, यीशु के शिष्य के रूप में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बहुत से मसीह गरीब और जरूरतमंद को दान देते हैं, जैसे यीशु ने सिखाया था, और अपने उद्धारकर्ता की शिक्षा का अनुसरण करते हुए अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा और इसके सदस्य इस कार्य में श्रेष्ठ हैं। हमारे सदस्य उदारता से योगदान और व्यक्तिगत सेवा और अन्य गरीब उपहार जरूरतमंद को देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सदस्य प्रत्येक माह में 2 भोजन का उपवास रखकर और कम से कम इन 2 भोजन के मूल्य के बराबर उपवास भेंट के रूप में देते हैं, जिसका उपयोग हमारे बिशप और हमारे शाखा अध्यक्ष जरूरतमंद लोगों सदस्यों की मदद करने के लिए करते हैं। भूखे की मदद के लिए उपवास रखना हमारी उदार मदद करने की एक रूप है, जिसमें हम शुद्ध किस्से के या तो अधिक पर हमारे गिरजे की विश्व मानव सेवा बहुत कम जानी जाती है। उदार सदस्यों द्वारा दिए गए दान फंड में अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक पीड़ित लोगों को पूरे विश्व में भेजता है। मानव सेवा के लिए यह दान पिछले दशक में कई करोड़ डॉलर बिना धर्म, जाति या नागरिकता के भेदभाव के दिया गया है।
Our massive relief effort following the
2011 के जापानी भूकंप और सुनामी के बाद हमारे विशालकाय राहत कार्य में 13 करोड़ डॉलर नकद और राहत सामग्री रूप में दिए थे। इसके अतिरिक्त 31,000 अधिक गिरजे के स्वयंसेवकों ने 6 लाख से अधिक घंटों की सेवा के रूप में दिए थे। हमारी मानव सेवा ने पूर्वी संयुक्त राष्ट्र में चक्रवात सैंडी के पीड़ितों को कई संसाधन के रूप में विशाल दान दिया था, और इसके साथ गिरजे के लगभग 28,000 सदस्यों ने 3 लाख घंटों की सेवकाई सफाई के लिए दिए थी। पिछले वर्ष अन्य कई उदाहरणों के बीच हमने 1,36,000 किलो कपड़े और जूते अफ्रीकी राष्ट्र चार्ट में शरणार्थियों के लिए दिए थे। पिछली एक चौथाई के शताब्दी के दौरान हमने 179 देशों में लगभग 3 करोड़ डॉलर की मदद की है। सचमुच लोग बोलते हैं गरीब और जरूरतमंद को कैसे देना चाहिए, यह मार्मन को मालूम है। बाइबल में अपनी अंतिम शिक्षा में हमारे उद्धारकर्ता ने अपनी अनुयायियों को उसके शिक्षाओं को प्रत्येक राष्ट्र में और प्रत्येक प्राणी तक ले जाने का निर्देश दिया था। पुनर्स्थापना के आरंभ से ही अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे ने इस शिक्षा का पालन करने का प्रयास किया है। तब भी जब हम कुछ हजार एक गरीब और संघर्ष हुआ करते थे, नया गिरजा थे, हमारे पूर्व मार्गदर्शकों ने महासागरों को पार पूर्व और पश्चिम में प्रचारक भेजे। लोगों के रूप में हमने आज तक मसीह संदेश सिखाना निरंतर जारी रखा है। हमारे बेजोड़ प्रचारक कार्यक्रम में 6 लाख पूरे प्रचारक प्रचारक हैं। इसमें हजारों ऐसे हैं जो कुछ समय की सेवा करते हैं। पूरे हमारे प्रचारक पूरे विश्व में 150 राष्ट्र और राज्यों में हैं। पहाड़ पर अपने महान उपदेश के समापन पर यीशु ने कहा था, इसलिए परिपूर्ण बनो वैसे ही जैसे स्वर्ग में तुम्हारा पिता परिपूर्ण है। उसकी इस शिक्षा का उद्देश्य और हमारे उद्धारकर्ता का अनुसरण करना उद्देश्य पिता के पास आना है, जैसे उद्धारकर्ता ने अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर कहा था। पुनः स्थापित सुसमाचार विशिष्ट आधुनिक प्रचुरण में हम जानते हैं कि ये शिक्षाएं अपने बच्चों के लिए पवित्र पिता परमेश्वर की उद्धार योजना का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत हम सभी अपने स्वर्गीय माता पिता के उत्तराधिकारी हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, परिपोसल पॉलुस ने सिखाया था, क्योंकि हम उसकी संतान है, हम उत्तराधिकारी भी हैं, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह का उत्तराधिकारी। इसका अर्थ है, जैसे हमें नए नियम में बताया गया है कि हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। यदि हम पिता के पास आते हैं, हम उसके सब कुछ मालिक बनेंगे। एक ऐसी परिकल्पना जिसे हमारे नश्वर मन मुश्किल से समझ पाता है, लेकिन हम कम से कम समझ सकते हैं कि अनंत काल में यह अंतिम सौभाग्य पाना केवल तभी संभव है जब हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, जो सिखाता है कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आता। यहाँ और के पश्चात उसका अनुसरण करने के और उसके समान बनने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमारे स्तुति गीत कम फॉलो मी के अंतिम पद में हम गाते हैं,
क्या केवल जानना ही काफी है कि हम उसका मुंतजर करना है इस आंसू भरी घाटी की यात्रा के दौरान? नहीं, ऐसा पवित्र राज्य तक जागे रहता है, क्योंकि सिंहासन, शासन और राज्य, शक्तियां और महान महिमा और परमानंद हमारे हैं। यदि हम अनंत काल तक उसके शब्द आओ मेरा अनुसरण करो का पालन करते हैं, मैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता हूं, जिसकी शिक्षाओं और उदाहरण का अनुसरण करने का हम प्रयास करते हैं, वो सबों को जो कि बोझ, भारी बोझ से दले हैं, उसके पास आने, उससे सीखने, उसका अनुसरण करने और इस प्रकार हमारी आत्मा का विश्राम पाने का निमंत्रण देता है। मैं उसके संदेश और दिव्य मिशन और उसकी पुनर्स्थापित गिरजे की अधिकार की सफाई, सच्चाई की गवाही देता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My beloved brothers and sisters,
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस दोपहर की प्रेरणा से भरी जनरल सम्मेलन में संबोधित होने का बहुत आभारी हूँ। संबोधित करने का विषय मेरे दिमाग में बहुत ही पवित्र है। मैं पहले आभार की निष्ठा के साथ उनमें बहुत से सहयोगियों का सभी युग से पहचाना जाता हूँ। मेरे पूर्वज फ्रेंच प्रोटेस्टेंट और आयरिश कैथोलिक शामिल हैं, क्योंकि उनके विश्वास और परमेश्वर की उपासना से उनमें से बहुतों ने अपने पद, संपत्ति और अपने जीवनों का अपने परमेश्वर को बचाने और उनके विश्वास के लिए त्याग कर दिया था। संत होने के रूप में और मसीही होने के नाते उसी तरह से हमें परमेश्वर, स्वर्गीय पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह में गहरा मजबूत विश्वास, परमेश्वर में निष्ठा रखना हमेशा से पवित्र और हम में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत विषय रहा है और हमारे बनाने वालों के बीच में भी। हमारा प्रश्न अनंत जीवन के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय परमेश्वर कौन है के प्रश्न से, और हमारे लिए उनके साथ वापस जाकर रहना है। उद्धारकर्ता ने अपने पिता से प्रार्थना की और अनंत जीवन यह है, वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। यहाँ तक इस घोषणा के प्रकाश में हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा पिता और पुत्र की प्रकृति का प्रबल दृश्य कई शताब्दियों तक है और मानव जाति के बीच पवित्र धर्मशास्त्रों की शिक्षा से स्पष्टता से मेल नहीं खाता है। हम आदरपूर्वक मानते हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचार का हृदय और उसकी बचाने की शक्ति ही सही समझ है पिता और पुत्र की। यीशु मसीह के सुसमाचार का अति महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत जोसेफ स्मिथ के प्रथम दिव्य दर्शन सन 1820 में पुष्टि करता है। भविष्यवक्ता ने लिखा था, मैंने दो ईश्वरीय जन को देखा था जिनकी चमक प्रकाशमय और महिमा सभी वर्णों से परे थी, हवा में ऊपर खड़े हुए थे। उनमें से एक मेरे से बोला, मेरे नाम से पुकारा और कहा, दूसरे की इशारा करके बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र, इसको सुनो। यह अनुभव बालक जोसेफ स्मिथ द्वारा हुआ था। बाद में अन्य दिव्य दर्शन और प्रकटीकरण प्रकट किया कि सच में परमेश्वर है। पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह दो अलग और भिन्न व्यक्ति हैं। परमेश्वर की आकृति में इंसान को बनाया गया। स्वर्गीय पिता सच में यीशु मसीह का पिता है। परमेश्वर का प्रकटीकरण इंसान को लगातार प्रकट करता है। परमेश्वर हमारे पास है और हम में रुचि रखता है और वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यहाँ तक पिता और पुत्र की आकृति समान है, पवित्र लेखों में संबंध निराला है। प्रथम दिव्य दर्शन को अद्भुत उदाहरण मानते हैं कि पवित्र धर्मशास्त्र में अन्य लेखों की घटनाएं बहुत अच्छे से लिखित हैं। नए नियम में उदाहरण के लिए हम स्टीफन की आखिरी गवाही को उसकी हत्या के समय पढ़ते हैं। उसने कहा, देखा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ हूँ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। जबकि महादिव्य दर्शन में आयल का पैटमस प्रेरिता यहुन्ना ने प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान को देखा और साथ में परमेश्वर का मेमने जिसने अपने लहू से मोल लिया है। मॉर्मन की पुस्तक में पिता और पुत्र के सिद्धांत पवित्र बाइबल के साथ गौरवशाली गवाही के साथ खड़े होते हैं। मॉर्मन की पुस्तक ने हमारे उद्धारकर्ता का निफाटियों से भेंट करने का लेख है जिसमें पिता की आवाज लगभग 2500 निफाटियों की उपस्थिति में जी उठे मसीह से परिचित कराया था। मेरे प्रिय पुत्र को देखो जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जिसके द्वारा मैंने अपने नाम को यशस्वी किया है, तुम उसकी बातों को सुनो। 400 समाचारों में मसीह खुद अपने स्वर्ग में पिता का 160 बार संदर्भ करते हैं, जबकि उनकी 3 संक्षिप्त के शासन में निफाटियों के बीच मॉर्मन की पुस्तक में 122 बार उसने पिता का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए मत्ती में यीशु ने कहा, जो मुझसे है हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहुन्ना में उसने गवाही दी, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करता देखता है। और लूका में वह चिल्लाया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर बार हमारे प्रभु ने अपने स्वर्गीय पिता का संदर्भ किया, वह हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करता था। इसमें कहते हैं, मैं आशा करता हूँ किसी को भी गलत नहीं समझा जाएगा, यीशु मसीह ही महान यहोवा है, इज़राइल का परमेश्वर, वादा किया हुआ मसीहा, और क्योंकि उसके प्रायश्चित के वही हमारा उद्धारकर्ता और संसार का मुक्तिदाता है। उसके लिए प्रेरित पौलुस ने घोषणा की थी, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज पिता परमेश्वर कैगत के में सौंप देगा। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित की पूर्व शाम उसने अपनी मध्यस्थ में महान प्रार्थना अपने पिता को दी। उसकी प्रार्थना, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, दूसरे शब्दों में उसके शिष्यों, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन में के द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे, कि वे सब जो एक जैसा तू है, पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक जैसे हों जैसे हम एक हैं। पिता और पुत्र अलग विभिन्न लोग हैं, परंतु पूर्णता से एक हैं और एक ही शक्ति और उद्देश्य में। उनकी एकता उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसी कारण वश उनकी इच्छा की यही एकता उन सभी जो श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञाओं का अनुसरण और पालन करते हैं के लिए भी है। कैसे परमेश्वर को लगन से खोज करने वाले पिता और पुत्र से परिचित करने में प्रवीण होते हैं। हमारे उद्धारकर्ता ने वादा किया, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें सारी बातें सिखाएगी। मॉर्मन की पुस्तक में नेफी जब मसीह के सिद्धांत बता रहा था ने घोषित किया कि पवित्र आत्मा ने पिता और पुत्र की साक्षी दी है। यह सच है कि पवित्र आत्मा की शक्ति या प्रभाव को अवसर पर महसूस किया जाता है। प्रभु की इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के धर्म की समझ के लिहाज किए बिना, परंतु पूरे मापतौल पर या उपहार पवित्र आत्मा का तभी आता है जब व्यक्ति टूटे दिल और शोकित आत्मा के साथ बपतिस्मा की धर्म विधियां और पवित्र आत्मा का उपहार सिर पर हाथ रखने द्वारा ग्रहण करता है। यह और अन्य पवित्र धर्माविधियों को करना परमेश्वर के पौरोहित्य के अंतर्गत निर्देश में करना होता है। इसी उपलक्ष्य में हमें सिखाया था और यह महान पौरोहित्य सुसमाचार की सेवा और स्वर्ग के रहस्यों की कुंजी यहाँ तक परमेश्वर की स्वर्ग की कुंजी को धारण करते हैं। इस कारण से धर्माविधियों में उसकी धर्मनिष्ठा का बल सुस्पष्ट होता है। इनकी सच्ची रोशनी देखें। पिता और पुत्र के सिद्धांत अनंत परिवार के सिद्धांत हैं। हर मानव जाति का इंसान स्वर्गीय माता पिता के साथ आत्मिक बच्चे के रूप में पहले से रहता था। मसीह के साथ स्वर्गीय परिवार में यह पहला बच्चा था, तो यह हम सभी के साथ है। हम हमारे स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। अध्यक्ष एजरा थेव बेंसन भविष्यवक्ता की दूरदृष्टि के साथ कहते हैं, कुछ भी नहीं हमें अधिक चौंकाने वाला है। जब हम पर्दे के उस पार जाएंगे तब जानेंगे कि हमें हमारे स्वर्ग में पिता को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और उनका चेहरा हमारे लिए कितना पहचाना सा है। मैंने ये सीखा था कि इन बातों को मनुष्य की भाषा में व्यक्त करना असंभव है, जिन्हें सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति के द्वारा जाना जाता है। ये इस आत्मा में है कि सच्चाई की गवाही देता हूँ। हमारे अनंत पिता और उनका पवित्र यीशु मसीह की निकटता और अच्छाई की, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ मिलकर गाएगी Now Let Us Rejoice. गीत गाए जाने के बाद हम एनरिक आर फेलाबेला, एरिस डब्ल्यू कोपिस्के और ब्रूस डी पोर्टर 70 के को सुनेंगे। इनके बाद एल्डर डीट और क्रिस्टोफरसन 12 प्रेरितों की परिषद से होंगे।
This is the 183rd annual general.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर का 183वां वार्षिक जनरल सम्मेलन है।
Some parents excuse themselves for mistakes they have made at home.
कुछ माँ बाप अपनी खुद की गलतियों की माफी के लिए जिन्होंने घर में की थी बयान देते हैं कि इसका कारण है कि माता पिता के लिए पाठशाला नहीं है. सच्चाई में ऐसी पाठशाला होती है और यह सबसे अच्छी हो सकती है. इस पाठशाला को घर कहते हैं. जैसे मैं अतीत में अपनी यादों में जाता हूँ, मैं अच्छे लम्हों को मैंने जिसे अपनी पत्नी के साथ अनुभव किए थे को याद करता हूँ. जैसे मैंने उन लम्हों को आपके साथ बांटता हूँ, आप अपने खुद के अनुभवों को याद कर सकते हैं, खुशी और गम दोनों को. हम उन सभी से सीखते हैं. जब पहला मंदिर ही जगह है. जब मैं मिशन से लौटा था, मेरी मुलाकात एक सुंदर लंबे काले कमर को छूते बालों वाली युवती से हुई थी. उसकी सुंदर बड़ी आंखें और घायल करती हुई मुस्कान थी. उसने मुझे पहले ही पल से जब से देखा था बांध लिया था. मेरी पत्नी का मंदिर में विवाह करने का उद्देश्य था. तथापि उस वक्त पास के मंदिर की यात्रा लगभग 4,000 मील थी. हमारी स्थानीय विवाह कार्यक्रम खुशनुमा और गंभीर दोनों था. हमारा विवाह तारीख की समाप्ति के साथ हुआ था. अफसर ने शब्दों में घोषित किया, और मैं तुम्हें अब से पति और पत्नी घोषित करता हूँ. परंतु तुरंत ही उसने कहा, जब तक मृत्यु तुम्हें जुदा न करे. त्याग करने के साथ हमने ऐसा एरिजोना मंदिर की एक तरटा टिकट खरीद ली. मंदिर में वेदी पर घुटने टेककर एक अधिकारित सेवक ने शब्दों का उच्चारण किया जो मैं चाह रहा था, जिसने हमें सारी अनंतता के लिए पति और पत्नी घोषित किया. उस रविवार एक मित्र हमें रविवार विघायल यानी संडे स्कूल ले गया था. सभा का दौरान उसने खड़े होकर हमें कक्षा से परिचित कराया. जैसे सभा समाप्त होने को थी, एक भाई ने मेरे पास आकर और मुझसे हाथ मिलाया. उसने $20 का बिल छोड़ा था. तुरंत बाद वैसे ही एक अन्य भाई भी मेरे पास आए और उसने भी मुझे चकित किया. वह भी मेरे हाथ में बिल दे गया. मैंने तुरंत ही अपनी पत्नी को ढूंढा जो कमरे के पार थी और चिल्लाया, ब्लैंकी अब से सबसे हाथ मिलाओ. जल्दी हमारे पास ग्वाटमाला लौटने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा हो गया था. सेलेस्टियल महिमा में वहाँ 3 स्वर्ग या श्रेणियां हैं, और सबसे ऊंची को पाने के लिए एक व्यक्ति को इस पौहृत्य क्रम से प्रवेश करना जरूरी है. दूसरा, संघर्ष करना. आपको दो लोगों की जरूरत है. मेरी पत्नी का एक मोटो रहा है, संघर्ष करने में आपको दो लोगों की जरूरत है, और मैं उनमें से एक कभी नहीं होंगी. प्रभु ने सफाई से विशेष वर्णन दिया जिससे दूसरों से निभाने का हमें मार्गदर्शन करना चाहिए. यह दृढ़ विश्वास, लंबे पीड़ा, सभ्यता, विनम्रता और निष्कपट प्रेम है. परिवार में शारीरिक दुर्व्यवहार का अभ्यास होना कुछ समाजों में कम हो गया है, और हम उसमें आनंद मना रहे हैं. फिर भी हम भावुक दुर्व्यवहार से दूर हैं. इस प्रकार के दुर्व्यवहार की क्षति का कारण हमारी यादों में पनपने लगता है. यह हमारी छवि को घात करता है. यह दिलों में नफरत का बीज बोता है. यह हमारी मनोभावना को कम करता और हमें भय से भर देता है. सेलेस्टियल विवाह के कार्यक्रम में भाग लेना ही काफी नहीं है, हमें सेलेस्टियल जीवन भी जीना है. तीसरा, एक बच्चा जो गाता है वह खुशनुमा बच्चा है. मेरी पत्नी ने यह दूसरा मोटो जल्दी से बताया. उद्धारकर्ता पवित्र संगीत की महत्वता को समझता है. धर्मशास्त्र बताते हैं कि फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए, और भविष्यवक्ता जोसेफ के द्वारा बोलते हुए उसने कहा, मेरी आत्मा हृदय के संगीत में प्रसन्न होती है. हाँ, नेकता की प्रार्थना मेरे लिए गीत है, और इसका जवाब उनके सरों के ऊपर आशीषों के साथ आता है. एक नन्हे से गीत सुनना जिसे उसके अभिभावकों ने गाना सिखाया हो, इससे सुनना कितना भावुक है. आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, चौथा, मुझे तुम्हारे आलिंगन की जरूरत है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे क्षमा करे शब्द जैसे आत्मा पर मलहम का काम करते हैं। ये आंसुओं को आनंद में बदल देते हैं। ये आत्मा पर पड़े बोझ को आराम देते हैं और ये हमारे हृदय को कोमलता का एहसास देते हैं। मुझे याद है वो दिन जब हम अपने प्रेम पत्रों को डाक से भेजा करते थे या कुछ पैसे जमा करते थे अपने प्रिय को फोन बूथ से फोन करने के लिए, या हम कागज पर चित्र बनाते और प्रेम कविता लिखते थे। आज ये सब संग्रहालय में रखने का सामान है। आजकल की तकनीकी और उम्र हमें ऐसे चमत्कार करने की अनुमति देती है। कितना आसान हो गया है प्रेम और आभार का टेक्स्ट मैसेज भेजना। युवा हर समय इसे करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ यदि यह और दूसरे खूबसूरत अभ्यास जारी रहेंगे तब हमारा घर बन जाता है। एक अभी अभी का टेक्स्ट संदेश मुझे मेरी पत्नी ने भेजा था इस प्रकार, स्वर्ग के समान आलिंगन, सूरज के समान एक चुंबन और चांद के समान एक शाम, खुशनुमा दिन हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता, मानो मैं स्वर्ग में हूँ जब मुझे ये संदेश मिला। हमारे स्वर्ग में पिता अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक संपूर्ण उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं पांचवा, मैं मॉर्मन की पुस्तक और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। मैं भावुक हो जाता हूँ जब मैं अपनी पत्नी को हर रोज मॉर्मन की पुस्तक पढ़ते हुए देखता हूँ। जैसे वह ये करती है, मैं उसकी गवाही को महसूस कर सकता हूँ, सिर्फ उसके मुखाकृति की प्रसन्नता को देखकर, जैसे वह छंदों को पढ़ती है जो कि उद्धारकर्ता के सेवकाई की साक्षी है। हमारे उद्धारकर्ता के कितने ज्ञान भरे शब्द हैं। तुम पवित्र शास्त्रों को ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। इससे प्रेरणा पाकर मैंने अपनी पोती रखेल से बोला, जिसने अभी अभी पढ़ना सीखा था, मॉर्मन की पुस्तक को पढ़ने का एक उद्देश्य बनाने के बारे में आप क्या कहेंगी? उसका जवाब था, परंतु दादाजी ये बहुत कठिन है, ये पुस्तक बहुत बड़ी है। तब मैंने उससे मेरे लिए एक पेज पढ़ने को पूछा। मैंने घड़ी निकाली और समय देखने लगा। मैंने कहा, तुमने सिर्फ 3 मिनट लिए और स्पैनिश वर्जन मॉर्मन की पुस्तक में 642 पेज हैं, तो तुम्हें 1926 मिनट की जरूरत है। यह उसे और भी ज्यादा डरा सकता था। तो मैंने उस संख्या को 60 मिनट से भाग के द्वारा घटाकर कर दिया और उसे कहा कि उसे सिर्फ पढ़ने के लिए 32 घंटों की जरूरत है, 1.5 दिन से कम की। तब उसने मुझसे कहा, दादाजी ये तो बहुत आसान है। अंत में रकेल, उसका भाई एस्टिबन और हमारे दूसरे पोता पोती ने इससे ज्यादा समय लिया, क्योंकि इस पुस्तक को प्रार्थना की आत्मा और मनन के साथ पढ़ाने की और पढ़ने की आवश्यकता होती है। समय के साथ जैसे हम धर्मशास्त्रों को सीखने में प्रसन्न होते हैं, भजनकार की तरह हम भी चिल्ला सकते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। छठा, धर्मशास्त्रों को जानना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें जीना है। मुझे याद है जब मैं मिशन से लौटा था, धर्मशास्त्रों को लगन से ढूंढता था। मैं सोचता था मुझे उसमें सब कुछ पता है। हमारे प्रणय याचना के समय ब्लैंकी और मैं धर्मशास्त्रों को एक साथ पढ़ते थे। मैं अक्सर अपने नोट और सुसमाचार के ज्ञान के संदर्भों को उसके साथ बांटता था। विवाह होने के बाद मुझे एक गंभीर अनुमति हुई। मैंने उससे एक अच्छा पाठ सीखा था। शायद मैंने उसे सुसमाचार सिखाने की कोशिश की, परंतु उसने मुझे उसे कैसे जिया जाता है सिखाया था। जब उद्धारकर्ता ने पहाड़ी का संदेश खत्म किया, उसने ये ज्ञानी सलाह दी थी, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वे जो धर्म शास्त्रों में पाए जाने वाले सेलेस्टियल नियमों को जीते हैं, उनको आराम देते हैं जो पीड़ित हैं। वे जो निराश हैं उन्हें खुशी देते हैं, खोए हुओं को रास्ता दिखाते, जो थके हुए हैं उनको शांति और सच्चाई खोजने वालों को मार्गदर्शन देते हैं। सारांश में पहला मंदिर ही जगह है, दूसरा संघर्ष करना आपको दो लोगों की जरूरत होती है, तीसरा एक बच्चा जो गाता है खुशहाल बच्चा है, चौथा मुझे तुम्हारे आलिंगन की आवश्यकता है, पांचवा मैं मॉर्मन की पुस्तक और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, छठा धर्मशास्त्रों को जानना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें जीना है। यही और बहुत से दूसरे पाठ घर में सीखते हैं, वो जगह जो कि यहाँ धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा बन सकता है। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह का सुसमाचार और हमारे स्वर्ग के पिता की योजना इस जीवन में निश्चित मार्गदर्शन और अनंत जीवन का वादा प्रदान करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
When I was a boy, I remember my father.
जब मैं एक लड़का था, मुझे याद है कि मेरे पिता कभी-कभी मुझे अपने साथ अनुसंधान पर काम करने के लिए ले जाते थे। हमारे पास एक किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर हम रहते थे एक छोटा सा बगीचा था, और वहाँ पर हर मौसम में तैयारी करने को हमेशा कुछ न कुछ होता था। हर मचान पर कार्य करते या बनाते या मरम्मत करते थे। मेरी यादों में यह कार्य हमेशा ठंडी कड़कती ठंड बर्फबारी या बरसात में ही होता था, परंतु मुझे ये अच्छा लगता था। मेरे पिता ने मुझे धीरज और लगनता के साथ कैसे काम करना सिखाया था। एक दिन उन्होंने मुझे नट को कसने के लिए बुलाया और चेतावनी दी, याद रखना यदि तुम नट को अधिक कसोगे वे टूट जाएगा। कब से मैं उन्हें दिखाना चाहता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनकी अपनी सारी क्षमता से नट को कस दिया और यकीनन मैंने नट को तोड़ दिया। उन्होंने एक हास्य व्यंग दिया और हमने शुरू से आरम्भ किया। तब भी जब मैंने खराब किया था, मैंने हमेशा मेरे अंदर उनके प्रेम का और भरोसे का महसूस किया। उनको 10 साल हुए हैं जुदा गए हुए, लेकिन आज भी मैं उनकी आवाज सुन सकता हूँ, उनके प्रेम को महसूस करता हूँ, उनके प्रोत्साहन का आनंद लेता हूँ, उनकी स्वीकृति को मानता हूँ। अच्छे लोग द्वारा ग्रहण होने हमें प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारी स्वयं क्षमता और स्वयं भरोसे को बढ़ाता है। वे जिन्हें इच्छानुसार स्वीकार न किया जा सकता है, वे इसे अक्सर कहीं और ढूंढते हैं। वे उन लोगों की ओर देख सकते हैं जो उनका भला चाहने से रुचि नहीं रखते। वे शायद झूठी मित्रों से लगाव करें और अप्रसन्नचित वाले काम करें। वे अपनी ओर ध्यान खींचने को पाने की कोशिश करते हैं। वे शायद विशेष प्रकार के कपड़े पहनने के द्वारा स्तर को दिखाकर यह एहसास उत्पन्न कर स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। कुछ के लिए एक भूमिका या एक ऊंचा स्थान का पद पर होना भी स्वीकार किए जाने का प्रयास करने का तरीका भी हो सकता है। वे अपनी योग्यता द्वारा पाए पद जो उनके पास है या सर जो उनका है वे स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ तक गिरजे में हम भी प्रकार की सोच में हमेशा मुक्त नहीं हैं। गलत सूत्रों से स्वीकार किया जाना या गलत कारणों से अपने आप को खतरनाक रास्तों पर ले जाना, एक यही तरीका हमें दूर करता और यहाँ तक नष्ट भी करता है। एहसासों का पोषण करने और स्वयं भरोसा करने की बजाय त्यागे हुए और अधीन होने का एहसास हमारा परिणाम होगा। आलमा ने अपने बेटे इलमन को सलाह दी, परमेश्वर की ओर देखकर जीवित रहो। हमारे स्वर्गीय पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारा अंतिम मूल अधिकार है। वे हमें जानते हैं, हमें प्रेम करते हैं। वे हमारे उपाधि या पद से नहीं स्वीकार करते। वे हमारे ओहदे को नहीं देखते। वे हमारे हृदयों में देखते हैं और वे हमें जैसे हम हैं और जो हम बनने का प्रयास करते हैं को स्वीकारते हैं। उनके द्वारा ग्रहण होने और पाने से हमें हमेशा से ऊपर उठने और प्रोत्साहित होता है। मैं एक साधारण उदाहरण बांटता हूँ जिससे यदि लागू किया जाए हमें से प्रत्येक को आखिरकार स्वीकारे जाने में मदद कर सकता है। ये उदाहरण प्रभु द्वारा भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को दिया गया था। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम में से ये सभी जो अपने हृदय की ईमानदारी को और टूटा हुआ और उसकी शोकत आत्मा को जानते हैं और वे जो अपने अनुबंधों को त्यागने के द्वारा स्वच्छ से करते हैं, हाँ सारे बलिदान जिसे मैंने प्रभु ने आज्ञा दी है वे मुझे स्वीकारा है। ये उदाहरण तीन साधारण तरीकों से बने हैं। जानो, पहला जानो कि हमारे हृदय ईमानदार और निराश है। दूसरा जानो कि हमारी आत्मा शोकत है। और तीसरा बलिदान द्वारा स्वच्छता से अपने अनुबंधों का पालन करेंगे जैसे प्रभु आज्ञा दी गई है। पहला, हमें जानने की जरूरत है कि हमारा हृदय सच्चा और खेदित हो। हम उसको कैसे जान सकते हैं? हमें खुद ईमानदारी से मनन करने में व्यस्त होना आरंभ करना है। हृदय हमारी भावनाओं का केंद्र है। जैसे हम अपने हृदयों के अंदर देते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं। हमारे आसपास कोई भी नहीं जानता, हम जरूर जानते हैं। हम अपने उद्देश्यों और कामनाओं को जानते हैं। जब हम सच्चे मन ईमानदारी से मनन करने में व्यस्त हों, हमें तर्कवादी या अपने आप को धोखा नहीं देना है। यकीन है कि अपने आप से न्याय करने का यदि हमारे हृदय खेदित हों, एक खेदित हृदय नम्र, खुला हुआ और एक ग्रहणशील हृदय होता है। जब मैंने उदाहरण को कहा, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूँ, मैंने अपने हृदय के द्वार पर उसको खटखटाने को सुना है। यदि मैं उसके लिए द्वार खोलता हूँ, मैं आत्मा के नियंत्रण देने से अधिक उत्तरदायी होता हूँ और मैं अधिक परमेश्वर की इच्छा को मानता हूँ। जैसे हम हमारे सच्चे हृदय और खेदित हों, हमें सच्चाई और प्रार्थना पूर्वक मानने को पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाएगा। हमें एक मीठी सी अनुभूति या अच्छा सुधार प्राप्त होगा। हमें कार्य करने का निमंत्रण मिलेगा। सेकेंडली, दूसरा हमारे मालूम होना है कि हमारी आत्मा शोकित है। शोकत ऑक्सफर्ड शब्दकोश की दी गई परिभाषा, एहसास या किसी ने कुछ करने का पछतावा महसूस करना। यदि हमारे पास शोकत आत्मा है, हमारे पापों और आने वाली परेशानियों को जाते हैं। हमें धार्मिकता के विषय में बहुत सी बातों की शिक्षा दी है। हम अति दुख और पश्चाताप करने की इच्छुक होंगे। शोकत आत्मा सुनने की इच्छुक होती है, पर आत्मा आकर्षणों पर आकर्षित नहीं होता। शोकत आत्मा हमारे लगन और काम करने को निर्धारित करता है। हम परमेश्वर के सम्मुख विनम्र होने की इच्छा, पश्चाताप करने की इच्छा, सीखने की इच्छा और बदलने की कामना करते हैं। हम इच्छा पूर्वक प्रार्थना करते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरा तरीका, एक द्वारा प्रभु द्वारा ग्रहण किया जाना। हमारे बलिदान द्वारा अनुबंध का पालन करने का सचेत फैसला है। हाँ, हर बलिदान जिसे मैंने प्रभु आज्ञा देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बलिदान शब्द कुछ बड़ों को संदर्भ करता है। यह हमारे लिए करना कठिन होता है। कुछ परिस्थितियों में यह सच हो सकता है, परंतु अक्सर यह दिन प्रतिदिन मसीह के सच्चे शिष्य का जीवन जीने का और संदर्भ करता है। अपने अनुबंधों का पालन करने का एक तरीका, हर सप्ताह योग्यता से प्रभु भोज लेना। हम चेतना के साथ प्रभु भोज लेने की पवित्र धर्मविधि के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम प्रभु से अपने पवित्र वादे की पुष्टिकरण और नवीकरण करते हैं। इस तरह से हम उसकी स्वीकृति को महसूस करते और उसका आश्वासन पाते हैं कि हमारे प्रतिन को देखा गया और हमारे पापों को यीशु मसीह के प्रायश्चित द्वारा समक्षमा किया गया है। इस धर्मविधियों के दौरान प्रभु ने हमसे वादा किया है कि यदि हम उसके पुत्र का नाम इच्छा से और ऊपर अपने ऊपर लें और हमेशा उसे याद रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हमारे पास हमेशा उसकी आत्मा रहेगी। पवित्र आत्मा सदा निरंतर हमारे साथ रहने को आखिरकार परमेश्वर द्वारा हमें स्वीकारा जाना जरूरी है। अपने अनुबंधों को पालन करने के अन्य तरीके, बलिदान करना इतना साधारण है जैसे गिरजा में बुलाहट को स्वीकार करना और उस बुलाहट में ईमानदारी से सेवा करना, या हमारे भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन के नियमों का अनुसरण कर उन तक पहुंचे जो इस बाड़े से दूर खड़े हैं और जिन्हें आत्मीयता से बचने की जरूरत है। हम अपने अनुबंधों को बलिदान द्वारा शांति से अपने पड़ोसी की या समाज में या अपने पूर्वजों के नाम को खोजकर मंदिर में उनके लिए काम करके सेवा करते हैं। हम अनुबंधों का पालन साधारणता से नेकता के लिए बलिदान द्वारा खोलकर आत्मा की आवश्यकता को सुनकर जैसे हम रोज के जीवन को जीते हैं करते हैं। कभी कभी अपने अनुबंधों को पालन करना सिर्फ दृढ़ता से और ईमानदार से खड़े रहना ही है जब जीवन की आंधी हमें चारों ओर से घेर ले। कैसे उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तरीकों को समझने के बाद प्रभु एक अद्भुत उदाहरण दिखाता है कैसे व्यक्तिगत तौर पर हम पारिवारिक तरह से हमें लाभ होगा जैसे हम उसके ग्रहण किए जाने को खोजते हैं। उसने कहा मेरे लिए प्रभु उनको लाएगा जैसे एक फलदार वृक्ष जिसे अच्छी भूमि में शुद्ध छरने के द्वारा लगाया गया कि वह कीमती पैदावार फल लाए। जैसे हम प्रभु की आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत तरीके से लय में है उसकी स्वीकृति को महसूस करते हैं हम हमारी समझ में आशीषित होंगे और योग्यता में कई फल लाएंगे। हम भी उनके बीच में होंगे जिससे वह उसे कहा है धन्य है अच्छी और विश्वासी दास जो थोड़े में विश्वास रहेंगे और मैं तुझे ये वस्तुओं को आखिरकार बनाऊंगा और अब स्वामी के आनंद में तुझे सेवाएं करूंगा। प्रभु की स्वीकृति की खोज और प्राप्ति ज्ञान की ओर ले जाती है कि हमें उसके द्वारा चुने हुए और आशीषित हैं। हमारा भरोसा बढ़ेगा कि हमारा अच्छा करने के लिए मार्गदर्शन और नेतृत्व करेगा उसकी संभारे और हमारे हृदय हमारे जीवनों में हमारे परिवारों में प्रमाण देगी। मेरे अपने पूरे हृदय में उसका आपका आमंत्रित करता हूँ। प्रभु की खोज करें और उसके आशीषों को के वादों को आनंद लें। जैसे हम प्रभु के दिए गए साधारण तरीकों का अनुसरण करेंगे हम जान पाएंगे कि हमें अपनी विपत्तियां स्तर या नाश्वरता की सीमा के बावजूद उसे ग्रहण किया है उसकी प्यारी सी स्वीकृति के हमें प्रोत्साहन देती है हमारे विश्वास को बढ़ाती है जीवन के सभी उतार चढ़ाव को झेलने में मदद करती है हमारी चुनौतियों के बावजूद हम सफल उन्नति करते और शांति महसूस करेंगे। हम उन लोगों के बीच में होंगे जिनमें प्रभु ने कहा है डरो मत छोटे बच्चों तुम मेरे हो और मैंने संसार को जीत लिया है तुम उनमें से एक हो जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया है उनमें से कोई विनाश नहीं होगा जिससे मेरे पिता ने मुझे दिया है यीशु मसीह के नाम से आमेन।
On a Thursday evening in Jerusalem,
गुरुवार की शाम यरूशलेम में यीशु और उसके शिष्य ऊपर के कक्ष में मिलकर फसे का पर्व मना रहे थे। जो व्यक्ति उसके साथ थे नहीं जानते थे कि किसी दिन ये भोज अंतिम भोज कहलाया जाएगा। क्या वे ये जानते थे और इसका क्या मतलब है वे शायद रोते। उनका स्वामी यद्यपि सचमुच में जानते थे कि गतसमनी और गुलगुथा की कठिन परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। संसार के इतिहास का सबसे काले घटे भयानक रूप से किंतु यीशु ने उनसे कहा संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। हम आज के उपद्रव और अनिश्चित युग में जी रहे हैं। प्रभु ने इनोस के समय चिन्ह लगाने के द्वारा दुष्टता और बदला लेने वाला दिनों की भविष्यवाणी की थी। मुसीबत और कठिनाई के दिन आने वाले हैं। हमारे पास भी ढांढस बांधने और आनंदित होने के लिए कारण है। हम अंतिम युग में जी रहे हैं जब परमेश्वर ने अपने गिरजा और राज्य को पृथ्वी पर पुनर्स्थापित कर अपने पुत्र की वापसी के लिए तैयार किया। अध्यक्ष बॉयड के पाकर के अपने पोते पोतियों के और संसार की बढ़ती कठिनाइयां जिसमें हम रहते के बारे में बोला था। उसने कहा वे अपने जीवन काल में बहुत सी दुखी करने वाली घटनाएं देखेंगे उनमें से कुछ उनके उत्साह को परस्त करेंगी और उनके विश्वास को बढ़ाएगी परंतु यदि वे प्रार्थना पूर्वक मदद और मार्गदर्शन न खोजें उन्हें इन बातों के विरुद्ध ऊपर उठने की शक्ति दी जाएगी। बाद में उन्होंने जोड़ा नैतिक मूल्य उस पर उसकी सभ्यता का चक्रधार नीचे की जगह और की बढ़ने पर निर्भर जरूर होता है किंतु मैं भविष्य से नहीं डरता हूँ। भाई और बहनों हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं न ही हमारी आशा और हिम्मत विचलित हो क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पहले के रिकॉर्ड किए लेख के शब्दों के बीच सलाह दी थी कि यीशु ने अपने नए बुलाए गए शिष्यों को दो शब्द का उपदेश दिए थे डरो मत। उसने उस सलाह को अपने सेवकाई के दौरान कई बार दोहराया था। हमारे दिन में उसके संतों से उद्धारकर्ता ने कहा था ढांढस बांधो और मत डरो क्योंकि मैं प्रभु में तुम्हारे साथ हूँ एक द्वारा खड़ा रहूंगा। प्रभु अपने गिरजे और लोगों के साथ खड़ा है और उसके आगमन तक वे उन्हें सुरक्षित रखा है। सियोन में और उसके स्टेक में शांति होगी। उसने घोषणा की थी कि सियोन की भूमि पर एक साथ एकत्रित होकर उसकी स्टेक पर सुरक्षा के लिए और आंधी से बचने के लिए और कोप से जब ये बिना मिलावट के पृथ्वी पर डाली जाएगी। गिरजा अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए मोर्चाबंदी के रूप में खड़ा होता है। यहाँ तक कि संसार की परिस्थिति कितनी भी दुखदायी क्यों न हो, विश्वासी अंतिम दिनों के संत सियोन के स्टेक में आश्चर्य पाएंगे। प्रभु ने आदेश दिए कि पहाड़ का पत्थर कटकर बिना हाथों के सहारे नीचे आएगा और संपूर्ण पृथ्वी पर भर जाएगा, ना ही मानव जाति की शक्ति और योग्यता से, क्योंकि परमेश्वर ही इस कार्य का लेखक है और यीशु मसीह मुख्य कोने का पत्थर है। नेफी ने दिव्य दर्शन देखा कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मेमने की शक्ति संतों ऊपर आई और परमेश्वर के शर्तनामा के अंतर्गत आने वाले लोगों के ऊपर आई जो सार जगत में फैले हुए थे और सत्य निष्ठा के हथियार लिए हुए परमेश्वर के सामर्थ्य में शोभामान्य हो रहे थे। हम में से प्रत्येक और हमारे परमेश्वर की शक्ति से हथियारबंद हो सकते हैं, परंतु अंतिम दिनों के संतों का यीशु का गिरजा के प्रति सच्चे रहें और पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बनाएं। कठिनाई आ सकती है और हम वो सब नहीं समझ पाते हैं जो कुछ हमारे साथ या हमारे चारों तरफ हो रहा है, परंतु यदि वो संत जो नम्रता से प्रभु पे भरोसा करते हैं और हर जीवन की चुनौती में मार्गदर्शन और बल पाते हैं, जब सिर्फ हमारी एक ही इच्छा उसको प्रश्न करने की है, हम भीतरी शक्ति को गहराई से आशीषित होंगे। पुनस्थापन के पूर्व दिनों में गिरजों के सदस्यों ने अति पीड़ा सही थी। अध्यक्ष ब्रिगम यांग ने निम्नलिखित पहले की पीड़ा के बारे में कहा था, भीड़ से घिरे मौत और नष्ट होने की धमकियों का हर तरफ से आना मुझे मालूम न था, परंतु मैं उसमें खुश और अपनी आत्मा में अच्छा महसूस करता था, जैसे अभी कर रहा हूँ। परिणाम फीका और अंधेरे में लग रहा था, परंतु मैंने कभी भी इसे गिरजे में नहीं देखा, परंतु मैं जानता था कि परिणाम सच और योग्यता के प्रेमियों के कारण लाभदायक होगा। मेरा प्रचारक साथी पॉल, ऐसा एक जो हमेशा प्रसन्न रहता था, एक युवा पिता के रूप में उसे स्क्लेरोसिस बीमारी हो गई थी। इस विपत्ति के बावजूद वह लगातार दूसरों की सेवा खुशी के साथ और अच्छे मजाक के साथ करता था। एक बार वह अपने व्हीलचेयर में मेरे दफ्तर आया और घोषित किया, जीवन की शुरुआत मोटर बनी व्हीलचेयर के साथ, मैं हमेशा उसे याद करता हूँ। कुछ सालों पहले वे गुजर गया। ओलंपिक की रोशनी ऊपर उठाए अपनी व्हीलचेयर में हजारों की प्रोत्साहन के साथ चला था। उसी आगे की लपटों के समान पॉल का विश्वास समय के साथ कम नहीं हुआ था। जब मैं ब्रिगम यांग विश्वविद्यालय में एक छात्र था, मैं एक घर में रहता था जहां पर प्रचार कार्य से लौटे बहुत से प्रचारक थे। मेरे कमरे का साथी ब्रूस बहुत ही जिद्दादिली व्यक्ति, ऐसा जिससे कभी मिला न था। हम कभी उसके मुंह से नकारात्मक बात किसी के लिए या किसी भी परिस्थिति में नहीं सुनी थी और यह संभव नहीं था उसकी उपस्थिति में प्रफुल्लित ना हो। उसका प्रसन्न होना उद्धारकर्ता पर भरोसे पर और सुसमाचार की सच्चाई पर टिका था। एक ठंडी और सर्दी की सुबह मेरा एक अन्य दोस्त टॉम विश्वविद्यालय की दूसरी तरफ से आ रहा था। सिर्फ सुबह के 7 बजे थे और कैंपस में अंधकार छाया हुआ था, बर्फबारी हो रही थी, साथ में तेज हवाएं चल रही थी। क्या भयानक मौसम था, टॉम ने सोचा। जैसे वे आगे बढ़ा, बाहर अंधकार और बर्फबारी में उसने किसी को गाते सुना। सच में जिंदादली दोस्त ब्रूस बर्फबारी में चलते हुए आसमान पर अपना हाथ फैलाए वे ब्रॉडवे का संगीत गाते चले जा रहे थे।
Mexico, Oklahoma. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got a beautiful feeling.
सालों के मध्यंतर में वो अंधेरे आंधी में गति तीर आवाज मेरे लिए विश्वास और आशा के बारे क्या चिन्ह बन गई. यहाँ तक अंधियारी दुनिया में हम अंतिम दिनों के संत आनंद के साथ गाते हैं, जानते हुए कि स्वर्ग की शक्ति परमेश्वर के गिरजे और लोगों के साथ है. हम उसी में आनंदित होंगे कि एक सुंदर सुबह आने वाली है हजारों दिन के प्रभात में, जब परमेश्वर का पुत्र पूरब से उठेगा और पृथ्वी पर शासन करेगा.
When the Son of God shall rise in the east and reign again on earth. I think also.
मैं संसार के इतिहास की दो अन्य सुंदर सुबह के वीरों बारे में भी सोचता हूँ कि बसंत में न्यूयॉर्क पाल्मेरा का साफ दिन एक सुंदर सुबह एक युवा पुरुष जोसेफ स्मिथ नामक वृक्षों के घने जंगल में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए पूछा कि कौन सा गिरजा उसे जाना चाहिए. उस प्रार्थना के उत्तर में पिता और पुत्र सामने आए. समय की अवधि के पूरा होने के समय में यीशु मसीह के गिरजे का पृथ्वी पर पुनः स्थापना की अगवानी करेगा. मैं सोचता हूँ 2000 साल पहले भी ऐसी ही सुंदर सुबह हुई होगी यरूशलेम के शहर के बाहर, जरा सा बाहर. उस ईस्टर की सुबह कोई शक नहीं सूरज अपनी किरणों के साथ चमका होगा. औरतों का एक छोटा समूह बाग के गुफा पर गया ये सोचकर कि अपने क्रूस पर चढ़ाए प्रभु के शरीर का अभिषेक करेंगे. दो दूतों ने उनसे भेंट की और घोषित किया, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है. यीशु मसीह की पाप और मृत्यु के ऊपर विजय मैं साक्षी देता हूँ. हमारे अनंत पिता और उसका अनंत प्रेम अनुग्रह की योजना है. मैं गवाही देता हूँ जैसे हम हर सुबह उठते हैं, हम ऊपर स्वर्ग की ओर विश्वास से देखकर और कहते हैं आह क्या सुंदर सुबह है.
I pray in the name of Jesus Christ.
मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन.
In colonial times,
उपनिवेशीय समय में अमेरिका में श्रमिकी की बहुत मांग थी. 18वीं और आरंभिक 19वीं सदियों के दौरान संभावित प्रवासी श्रमिकों को ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य यूरोपियन देशों में भर्ती किया जाता था. लेकिन बहुत से जो जाना चाहते थे यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे. इन जैसे लोगों के लिए एक अनुबंध के तहत यात्रा करना आम बात थी, जिसके अनुसार इन्हें वहां पहुंचकर कुछ निश्चित अवधि के लिए यात्रा के भुगतान के बदले में बिना वेतन के काम करना पड़ता था. इस कुछ वादे के साथ आते थे कि उन्हें परिवार के सदस्य जो कि पहले से अमेरिका में हैं, आगमन पर उनकी यात्रा का भुगतान कर देंगे. लेकिन यदि ऐसा नहीं होता था तो आने वालों को अपना यात्रा खर्च बिना वेतन सेवा करके चुकाना होता था. इस अप्रवासी कामगारों को परिभाषित करने के लिए बंधक मुक्तिदाता शब्द उपयोग किया जाता है. इस तरह से उन्हें अपनी स्वतंत्रता को खरीदने के लिए काम करके अपनी यात्रा को प्रतिदिन करना होता था. यीशु मसीह के अति महत्वपूर्ण वर्णन करने वाले शीर्षकों में मृत्यु आता है. ये प्रत्येक अर्थ यीशु मसीह के पश्चाताप द्वारा संपन्न महान मुक्ति को दर्शाते हैं, जिसे शब्दकोश के शब्द पाप और इसके दंड से छुटकारा जैसे पापी के लिए बलिदान शामिल है. उद्धारकर्ता द्वारा मुक्ति के दो भाग हैं. पहला यह आदम की गलती और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के पतन की क्षतिपूर्ति, जो पतन के पश्चाताप प्रभाव कहे जाते हैं. शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु को पराजित करता है। शारीरिक मृत्यु को अच्छी तरह जाना जाता है, आत्मिक मृत्यु मनुष्य को परमेश्वर से दूर होना है। पौलुस के शब्दों में, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु से यह मुक्ति व्यापक और बिना शर्त दोनों है। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित का दूसरा पहलू वतन के अप्रत्यक्ष परिणामों से मुक्ति, आदम की गलती के साथ के स्थान पर हमें स्वयं के पाप से मुक्ति, पतन के कारण इस हम नश्वर संसार में पैदा हुए, जहां पाप यानी दिव्य रूपी से स्थापित व्यवस्था की अवज्ञा व्यापक है। हम सबसे बोलते हैं, हमें प्रभु कहता है, यद्यपि जब वे बड़े होते हैं पाप उनके हृदय में पमता है और वो कड़वे का स्वाद करते हैं ताकि अच्छे पुरस्कार को जान सके, और उन्हें बुराइयों से अच्छाई जानने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार वे स्वयं से कार्य करते हैं, क्योंकि हम उत्तरदायी हैं और हम खुद चुनाव करते हैं, इसलिए हमारे पापों से मुक्ति शर्तों पर मिलती है। स्वीकार करने और पाप को छेड़ देने और पवित्र जीवन की जो मुहर मुड़ने के शर्त पर, या अन्य शब्दों में पश्चाताप के शर्त पर। इसलिए प्रभु आदेश देता है, अपने बच्चों को सिखाइए कि भविष्य के सभी मनुष्य को हर स्थान पर पश्चाताप करना चाहिए, अन्यथा वे किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य के हदगार नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्तु वापस वहां निवास नहीं कर सकती या उसकी उपस्थिति में निवास नहीं कर सकती।
The atonement also satisfies the debt justice owes to us.
किसी भी कष्ट से कंजंगाए और क्षतिपूर्ति करके, जिसे हम निर्दोष कहते हैं, प्रतिशत हमारे लिए उस कर्ज को भी चुकाता है, जिसके लिए हम न्याय के देनदार, क्योंकि देखो वह सब मनुष्य के लिए कष्ट सहता है। हाँ, हर एक जीवित प्राणी, पुरुष स्त्री दोनों के लिए और बच्चों के लिए जो आदम के इस परिवार में संबंध रखते हैं। हमारे प्रचारकों का कार्य प्रभु के मुक्ति दिलाने वाले प्रेम की बहुत शानदार अभिव्यक्ति है। उसके अधिकृत संदेश वाहक के रूप में वे यीशु मसीह के विश्वास की अतुलनीय आशीषें, पश्चाताप, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का उपहार देकर आत्मिक पुनर्जन्म और मुक्ति की दुकान द्वार खोलते हैं। हम प्रभु द्वारा मुक्ति पाने के लिए मृतकों की भी सहायता कर सकते हैं। इस प्रबंध के विश्वासिक प्रचारक जब नश्वर जीवन से चले जाते हैं, वे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा पश्चाताप और मुक्ति के सुसमाचार का प्रचार का अपना कार्य उनके बीच जारी रखते हैं, जो कि मृतकों की आत्मा के संस्कार में अंधकार और पाप के बंधन में है। हम उन्हें परमेश्वर के मंदिरों और प्रतिनिधि संसारों का लाभ उठाने का उपलब्ध कराते हैं, जो पाप के बंधन में मरे थे और मुक्ति पा सकते हैं। जबकि मुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पश्चाताप और क्षमादान से संबंधित है, इसका बहुत महत्वपूर्ण नश्वर पहलू भी है। यीशु के लिए कहा जाता है कि वह जो करता है अच्छा करता है, जिससे शामिल है बीमारों को और लाचारों को चंगाई देना, भीड़ को भोजन कराना और उत्तम मार्ग को सिखाना। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया था कि वह सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया था कि वह आप सेवा टहल को करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। इस प्रकार की मुक्ति का कार्य का अर्थ है लोगों की अपनी परेशानियों में मदद करना। इसका अर्थ है गरीब और कमजोर के मित्र बनना, कष्ट सहने वालों को ऊपर उठाना, गलत और सही करना, सच्चाई की रक्षा करना, उभरती पीढ़ी को मजबूती देना और घर पर सुरक्षा और खुशी हासिल कराना। पृथ्वी पर मुक्ति का हमारा अधिकार कार्य दूसरों की प्रगति के में उचित आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में मदद करता है। विक्टर हुगो के उत्कर्ष नावल ले मिज़रेबल के उदाहरण यद्यपि कल्पित है, बाद में पुलिस के शक के कारण पकड़े जाने पर बलवाजो दवा करती है और की चांदी उसे दिए गए उपहार थे। जब पुलिस ने उसे खींच कर वापस बिशप के घर ले जाती है, ये देखकर वाल्जो को आश्चर्य होता है कि बिशप बेनवून उसके दावे को सच बताता है और उसे अच्छे प्रभाव से कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें मोमबत्ती स्टैंड भी दिए थे, वे भी चांदी और 200 फेंक के बिक सकती हैं। तुम प्लेट के साथ उन्हें भी क्यों नहीं ले गए? बिशप उसके निकट गया और हल्की आवाज में कहा, भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना कि तुम्हें वादा किया है कि तुम इस चांदी का उपयोग ईमानदार व्यक्ति बनने में करोगे। जॉन वाल्जो, जिसे इस वादे के बारे में कुछ याद नहीं था, हैरान खड़ा था। विश्व ने दृढ़ता से कहा, कहना जारी रखा, जॉन वाल्जो मेरे भाई, तुम्हारा बुराई के साथ अब कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे प्राण मैंने खरीद लिए हैं। मैं इसे अंधकार के विचार और शैतान की आत्मा से मुक्त करता हूँ। इसे परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। जॉन वाल्जो वास्तव में नया मनुष्य, एक ईमानदार व्यक्ति बन गया और बहुतों के लिए भलाई करने वाला बना। अपने पूरे जीवन भर उसने उन दो मोमबत्ती स्टैंड को संभाल कर रखा। कुछ प्रकार इस नश्वर मुक्ति आपसी सहयोग के प्रयासों में से आती है। इस कारण उद्धारकर्ता ने गिरजे की रचना की थी। स्टेक वार्ड शाखाओं और कोरम और सहायक संस्थाओं के रूप में संगठित होकर एक दूसरे को न केवल हम सिखाते और सहायता करते हैं, हम जीवन में आपातकाल से निपटने के लिए लोगों को साधनों को निकट लाते हैं। अकेले काम कर रहे लोग या अस्थाई समूह बड़े पैमाने की चुनौतियों का सामना करने के साधन हमेशा नहीं जुटा सकते। अपने साथी संतों और बहुत से अन्य जिन तक हम विश्व भर में पहुंच सकते हैं कि जरूरत के समय हम मदद करने के लिए यीशु मसीह के अनुदायी के रूप में संतों का एक संगठित समुदाय है। हमारे परोपकारी प्रयासों के कारण पिछले साल 36 देशों में 8,90,000 लोगों को साफ पानी मिला, 57 देशों में 70,000 लोगों को व्हीलचेयर मिली, 25 देशों में 75,000 लोगों को दृष्टि में सुधार हुआ और 52 देशों में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत मिली थी। इसके बाद 2012 में गिरजे के सदस्यों को $500 मिलियन के समान सेवा मिली थी। आपकी उद्धारकर्ता के लिए धन्यवाद।
During 2012. Thank you for your generosity. All of this does not begin to count the individual.
यह सब कुछ व्यक्तिगत दया और सहयोग के कामों, भोजन, कपड़ों, पैसा, देखभाल और अन्य और हजारों अन्य तरह के दिलासा और दया के उपहार, जिनके द्वारा हम मसीह सम्मान मुक्ति के काम में भाग लेते हैं, को गिनने के लिए नहीं शुरू किया। एक लड़के के रूप में एक जरूरतमंद महिला की मदद करने के लिए मैंने अपने स्वयं की माँ के कामों को देखा था। बहुत साल पहले जब उसके बच्चे छोटे थे, मेरी माँ का एक गंभीर ऑपरेशन हुआ था जिसने उनकी लगभग जान ले ली थी और जिसके कारण वह लगभग एक साल तक बिस्तर से नहीं उठ सकी पाई थी। इस समय के दौरान परिवार और वार्ड के सदस्यों ने मेरी माँ और हमारे परिवार की मदद की थी। इस कहानी को सुनाने के लिए मैं काल्पनिक नामों का उपयोग करूंगा, सारा माँ के लिए और एनी उनकी बेटी के लिए। मेरी माँ ने इस प्रकार कहा था, मैं इसे इतनी स्पष्टता से देख सकती हूँ मानो यह कल हुई हो। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ और बहन अब्राहम सारा को मेरे कमरे में के दरवाजे पर लाई। मेरा हृदय बैठ गया। वह पर इतना भद्दा व्यक्ति था जितना कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह बहुत पतली बिखरे बाल, कमर झुकी हुई, फिर सिर्फ सिर नीचे फर्श की ओर देखता हुआ। उसने अपने नाप के से 4 गुना बड़े कपड़े पहने हुए थे। उसने ऊपर नहीं देखा और इन्हें इतनी धीमे से बोला कि मैं उसे सुन नहीं पाई। इस प्राणी का मैं क्या करूंगी? उनके कमरे में चलने जाने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मुझे मदद की जरूरत थी, ना कि मुसीबत की। अब्राहम ने मुझे कुछ दिनों तक इनको जानने के लिए कहा कि इस लड़की का वास्तव में बहुत बुरा समय है और इसको मदद की सख्त जरूरत है। अगली सुबह जब सारा
She was a good cook and she kept the house clean, the washing done and
और उसने बताया कि वह
through the weeks I learned Sarah's story.
कई सप्ताह के दौरान मुझे सारा की कहानी पता चली, क्योंकि उसने कहीं काम सुनाई देता था, इसलिए वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई और स्कूल छोड़ना पड़ा था। उसकी शादी कम उम्र में एक आवारा आदमी से हो गई थी। एनी का जन्म हुआ और सारा के जीवन में खुशी आ गई। एक सर्दी की रात जब उसका पति शराब पी कर आया, उसने सारा और एनी को कार में उनके घर के कपड़ों में बिठाया और उन्हें हवाई पर छोड़ गया। उनकी माँ ने घर का सारा काम और खाना पकाना और उनकी बहन और भाई जो कि हाई स्कूल में थे की देखभाल करने के लिए बदले और उन्हें घर में रहने की अनुमति दे दी।
And taught special education. She bought a little home. Annie was
उसने छोटा सा घर खरीदा। एनी ने मंदिर में विवाह किया और 2 बच्चे हुए। सारा का बाद में कानों का ऑपरेशन हुआ और उसे ठीक से सुनाई देने लगा। कई सालों बाद वे रिटायर हुई और मिशन में सेवा की। सारा अक्सर मुझे धन्यवाद देती है और कहती है उसने मुझसे इतना कुछ सीखा था, विशेषकर जब मैंने उससे कहा था कि मेरे बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने एनी से कहा वैसा होने सीखा था। यीशु मसीह के शिष्य के रूप में अन्य लोगों को कष्ट और बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए हमें बहुत सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। फिर भी हम महानतम मुक्ति दिलाने वाली सेवा उन्हें मसीह की ओर से ले जाना होगा, लेकिन परमेश्वर से संपूर्ण न्याय और अनंत अनुग्रह पाने की कोई शक्ति इसमें नहीं है। अंतिम मुक्ति यीशु मसीह में है और केवल उसी में है। मैं विनम्रता और कृतज्ञता से उसकी मुक्तिदाता मानता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
At the conclusion of this conference, we express sincere
सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी को जिन्होंने इस सभा की तैयारी के लिए इतनी लगन से कार्य किया है का तह दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम उन सब वार्ताकारों और उनका जिन्होंने संगीत उपलब्ध कराया का धन्यवाद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन को सुनेंगे। उनके चर्चा के पश्चात गायक मंडली इस सम्मेलन का समापन Lord dismiss us with thy blessing गीत गा के करेगी और तब एल्डर लैरी वाई विल्सन 70 के द्वारा समापन प्रार्थना दी जाएगी और सम्मेलन को विलंब किया जाएगा।
My brothers and sisters,
मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये सम्मेलन आनंद देने वाला रहा है। मैं जानता हूं आप मेरे साथ सहमत होंगे कि सभी संदेश प्रेरणा देने वाले थे। हमारे हृदयों को छुआ गया और इस दिव्य कार्य की हमारी गवाहियां मजबूत हुई हैं। जब हमने प्रभु की आत्मा को महसूस किया, मेरी कामना है कि जो हमने पिछले दिनों में सुना है उसे हम लंबे समय तक याद रखें। मैं आपसे विनती करता हूं इन संदेशों को आगे अध्ययन करें। जब इन साइन और लिया होना पत्रिका के आने वाले संस्करणों में छपते हैं। हम जानते उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारा संबोधन किया और प्रार्थनाएं की। इसके अतिरिक्त संगीत आत्मिक रूप से ऊपर उठाने वाले और प्रेरणा देने वाला था। हम शानदार मंडप गायक मंडली से प्रेम करते हैं और अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संगीत उपलब्ध कराया था। हम मिलकर अपना आभार उन अध्यक्षताओं और युवतियों की जनरल परिषद के लिए व्यक्त करते हैं जिन्हें कल निर्मुक्त किया गया था। उनकी सेवाएं अद्वितीय और निष्ठा उत्कृष्ट रही हैं। हमने हाथों को उठाकर उन भाइयों और बहनों का समर्थन किया जिन्हें इस सम्मेलन के दौरान नए पदों पर नियुक्त किया गया है। हम चाहते हैं कि वे जानें कि हम स्वामी के काम में उनके साथ मिलकर सेवा करने को उत्सुक हैं। भाइयों और बहनों, हम एक विश्वव्यापी गिरजाघर हैं। हमारी सदस्यता विश्व भर में पाई जाती है। मैं चाहता हूं कि आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके अच्छे नागरिक बने और अपने समाज में अन्य लोगों के साथ साथ अपने विश्वास के लोगों तक पहुंचकर एक अच्छे पड़ोसी बने। हम उनके साथ सहनशील होने के साथ साथ दया और प्रेम रखें जो हमारे विश्वास और आदर्शों से भिन्न हैं। उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर सबके लिए प्रेम और सद्भावना का संदेश लाया। हम हमेशा उसके उदाहरण का अनुसरण करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के बारे में सचेत रहें। कुछ लोग हैं, विशेषकर युवा लोग, जो दुखद रूप से नशीली दवाओं, अनैतिकता, अश्लीलता और अन्य गलत कामों में शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जो अकेले हैं, जैसे विधवाएं, विधुर, जिन्हें दूसरों के सहयोग और देखभाल की जरूरत है। हम हमेशा एक मदद करने वाला हाथ और प्यार करने वाला दिल उनकी ओर बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहें। हम विश्व के इतिहास के ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन आनंद मनाने के बहुत से मौके और कारण भी हैं। अवश्य ही ऐसे समय भी हैं जब हम अपने जीवन में निराशाएं, परेशानियां और दुर्घटनाओं का अनुभव करते हैं। फिर भी यदि हम अपना भरोसा प्रभु में रखते हैं, वो कठिनाइयों को पार करने में हमारी मदद करेगा, चाहे ये कैसे भी हो। भजन के लिखने वाले ने ये आश्वासन दिया है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं आप जिन्हें यीशु मसीह के सुसमाचार को इन अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा पुनर्स्थापित करने का मैं कितना आभारी हूं। ये हमारे सुख का आधार है। हम विनम्र बने और प्रार्थना करते रहें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवनों में मार्गदर्शन और आशीष दें। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही और साक्षी देता हूं कि परमेश्वर जीवित है, कि वो हमारे विनम्र हृदयों की प्रार्थनाओं को सुनता है। उसका पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, हम में से प्रत्येक से बोलता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। हम इन शब्दों में विश्वास करें और इस प्रतिज्ञा का लाभ उठाएं। अब जब ये सम्मेलन समाप्त होता है, मैं स्वर्ग आशीषों को आप में से हर एक के ऊपर बुलाता हूँ। हमारे घर शांति, मेल मिलाप, कृतज्ञता और प्रेम से भरे रहें। उनमें प्रभु की आत्मा भरी रहे। आप सुसमाचार की अपनी गवाहियों को विकसित और मजबूत करें ताकि वे शैतान की चालों से आपको सुरक्षित रखें। 6 महीनों में जब तक हम दोबारा मिलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आशीष देगा और मेरे भाइयों और बहनों आपको संभालेगा। उसकी प्रतिज्ञा की गई शांति अब और हमेशा आपके साथ हो। मेरे लिए और सभी जनरल अधिकारियों के लिए आपकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता जिसकी हम सेवा करते हैं के नाम में आमीन।
Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, अपनी हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद देते हैं इस महासम्मेलन के लिए। हमें वास्तविक रूप से ऊपर उठाया गया है प्रेरणादायक संदेशों के द्वारा जो कुछ हमने सुना है। हम आपका सर्वेक्षण करते हैं कि हम इस समय में जीने के लिए प्रकटीकरण का समय, जब हम भविष्यवक्ताओं की आवाजों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, इस परेशानी और कठिनाई भरे समय में। हम आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम आगे से इस सम्मेलन से आगे बढ़ते हुए, ताकि हम अपनी आपकी ज्योति में चल सके जो आपने हमारे इसको दी है, ताकि हम दुनिया को प्रकाश दिखा सके। हमें मदद करें ताकि हम अपने उद्धारकर्ता के प्रकाश को अपने आप में जीवित कर सकें और दूसरों के संग वो बांट सके जो हम कहते हैं। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय में भविष्यवक्ता के हमारी मदद कर, उनकी सलाहों पर चलने की हमें शक्ति सामर्थ दीजिए, जो कि भी हमने कमर्शियल सम्मेलन में सुना है। यीशु मसीह आपके पवित्र के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 100.
छह अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 183वां अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन का प्रसारण था। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों से चुना गया था। संगीत मॉर्मन गायन मंडली द्वारा दिया गया था। बॉनविले डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए किया गया था। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।